ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी को पदमुक्त करने का सरकार ने किया निर्णय। नए प्रदेश प्रमुख के रूप में सुरेंद्र लाभ की हुई सिफारिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नेकपा एमएलए के सरोज कुमार यादव हुए नियुक्त। नियुक्ति के विरूद्ध 7 दलों ने जनकपुर में किया विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में हुए केस दर्ज। स्थानीय तहों के साथ समन्वय और सहकार्य करके ही सरकार आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने मध्य प्रदेश प्रमुख पद पर सुरेंद्र लाभ को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने यह निर्णय किया। बैठक ने मध्य प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी को पदमुक्त कर सुरेंद्र लाभ कर्ण को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश करने का निर्णय किया है। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने दी। बैठक ने कार्तिक 27 से प्रभावी होने के हिसाब से नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक यानी आईजीपी पद पर दान बहादुर कार्की को नियुक्त करने का निर्णय किया है। इसके अलावा कई अन्य निर्णय भी मंत्रिपरिषद की बैठक ने किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सरोज कुमार यादव नियुक्त हुए हैं। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी ने संविधान की धारा 168 की उपधारा 3 के तहत नेकपा एमएलए मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता यादव को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया के विरोध में जनकपुर में 7 दलों के नेता कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित 7 दलों ने आज जनकपुर में विरोध किया। उन्होंने आज सुबह से ही मध्य प्रदेश के भवन के आगे टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही मध्य प्रदेश प्रमुख कार्यालय के आगे रखी चीजों की तोड़फोड़ की और नारेबाजी की। इसी बीच मध्य प्रदेश की नियुक्ति के विषय में सुप्रीम कोर्ट में उत्प्रेक्षण के परमादेश की मांग के साथ 2 याचिकाएं दर्ज हुई हैं। नेपाल के संविधान की धारा 168 की उपधारा 3 के तहत मध्य प्रदेश सभा में मौजूद सबसे बड़े दल नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता सरोज कुमार यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर आज शपथ ग्रहण कराने के प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी के कदम को अनुचित बताते हुए 2 याचिकाएं दर्ज हुई हैं। प्रदेश प्रमुख सुवेदी और मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय को प्रतिवादी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में उत्प्रेक्षण परमादेश की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विमर्श के लिए कल मंगलवार का समय दिया है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आज स्थानीय तहों के जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री कार्की ने गांवपालिका राष्ट्रीय महासंघ और नगरपालिका राष्ट्रीय महासंघ के पदाधिकारियों के साथ आज दोपहर को बालुआटार में विचार विमर्श किया। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने बताया कि सरकार स्थानीय सरकारों के सहयोग और समन्वय के साथ ही आगे बढ़ेगी। इस बात का जिक्र करते हुए कि आगामी चुनाव संपन्न कराने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अधिक होगी, इसलिए भी स्थानीय तहों के साथ समन्वय और सहकार्य करके ही केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, उन्होंने कहा। विमर्श में सहभागी गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने शांति सुव्यवस्था के लिए स्थानीय सरकारों की ओर से हो सकने वाले सहयोग के लिए आग्रह किया था। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि पशुपति क्षेत्र विकास कोष को राजनीतिक भर्ती केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। आज कोष की संचालक परिषद बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि धार्मिक संस्था में धार्मिक व्यक्ति ही आवश्यक होते हैं, इसलिए इसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भर्ती इसमें नहीं होनी चाहिए। बता दें कि कोष की समूची कार्यवाही के संचालन और देखरेख करने के लिए संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री की अध्यक्षता में पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषद की कानूनी व्यवस्था है और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री के ही पास होने के कारण प्रधानमंत्री कार्की ने बैठक की अध्यक्षता की थी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर प्राध्यापक डॉ भागवत प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्की ने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आईन के तहत दांग तुलसीपुर उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 18 के प्राध्यापक डॉ शर्मा को सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। ये जानकारी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने दी। साथ ही सेवा आयोग के सदस्य पद पर फुंगलिंग तापलेजुंग के प्राध्यापक डॉ रमेश घिमिरे को प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा के चुनावों को लक्षित करते हुए आयोग के पूर्व पदाधिकारियों और पूर्व सचिवों के साथ परामर्श किया है। कांति पथ स्थित आयोग के केंद्रीय कार्यालय में आज आगामी चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और मितव्ययी बनाने के लिए अतीत का अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके साथ परामर्श किया। आयोग में वर्तमान में 125 दल पंजीकृत हैं। आयोग ने बताया है कि कुछ दल पंजीकरण की प्रक्रिया में भी हैं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी की नेता रामकुमारी झांकरी और किसान श्रेष्ठ सहित अन्य नेता नेकपा एमाले में शामिल हुए हैं। नेकपा एमाले द्वारा आज पार्टी सभागृह में घर फरकी यानी घर वापसी अभियान के तहत आयोजित विशाल पार्टी सम्मेलन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य गंभीर लाल श्रेष्ठ, पीताम्बर तिमल सिन्हा, नवराज पौडेल, राजाराम स्यांगतान, अंबिका राय, अर्जुन राय सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता एमाले में प्रविष्ट हुए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने डोलपा की त्रिपुरा सुंदरी नगरपालिका के तत्कालीन मुख्य प्रशासनिक अधिकृत सहित 8 लोगों के खिलाफ आज विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। आयोग ने त्रिपुरा सुंदरी नगरपालिका के तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत लाल प्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इंजीनियर कर्ण बहादुर कार्की, प्रशासनिक अधिकारी हीराचंद्र धराला, शिक्षा अधिकृत भीम बहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचंद्र बुढ़ा और एमआईएस ऑपरेटर हरिश्चंद्र विष्ट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पौडेल ने बताया कि आर्थिक वर्ष 2078-79 में नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 में स्थित खदांग से ल्हासा तक की मोटर सड़क के उन्नयन के दौरान अनियमितता के आरोप में ये पत्र दायर किया गया है। इस परियोजना की खरीद प्रक्रिया के मूल्यांकन में शामिल टेंडर मूल्यांकन समिति के सदस्य और परियोजना के इंजीनियर शिशिर कुमार गुरुंग, दिव्या निर्माण सेवा प्राली दुर्लभ डोलपा और निर्माण कंपनी के भीमराज निर्पाने को भी प्रतिवादी बनाया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ 55,89,000 रूपये का दावा किया गया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने औपचारिक रूप में राष्ट्रीय एआई केंद्र की आज शुरूआत की है। मंत्रालय में आज एआई केंद्र का उद्घाटन करते हुए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि एआई केंद्र की स्थापना से नेपाल डिजिटल सूचना और एआई क्षेत्र में इतिहास रचने वाले मोड़ पर पहुंच गया है। मंत्री खरेल ने आशा जताई कि एआई के विकास से देश में डिजिटल सुशासन, रोजगार सृजन, नीति क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार नियंत्रण में मदद मिलेगी। जिला प्रहरी परिसर भक्तपुर ने पुलिस चौकी, खरी पाटी और पुलिस वृत्त जगाती में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेएनजी आंदोलन के दौरान सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नंबर 8 जगाती में स्थित पुलिस वृत्त जगाती और चागू नारायण नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में स्थित पुलिस चौकी खरी पाटी में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 3 लोगों को नियंत्रण में लिया है। गिरफ्तार होने वालों में सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नंबर 9 पलासे के 28 वर्षीय सुदीप घिमिरे, काभरे पलांचौक की रोशी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के 26 वर्षीय छेकू लामा और चांगू नारायण नगरपालिका वार्ड नंबर 6 खरी पाटी के 46 वर्षीय सुरेश बास्तोला शामिल हैं। परिसर के सूचना अधिकारी डीएसपी प्रकाश जगेबू ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को हिरासत में रखकर आगे की जांच हो रही है। उदयपुर की त्रियुगा नगरपालिका में नगर अस्पताल निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान सहयोग उपलब्ध कराए जाने के संबंध में त्रियुगा नगरपालिका और भारतीय दूतावास के बीच अनुदान सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान त्रियुगा नगरपालिका और भारतीय दूतावास के बीच नगर अस्पताल निर्माण के लिए अनुदान सहयोग लिए जाने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय दूतावास द्वारा त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नंबर 5 देवरी स्थित नगर अस्पताल के निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपये का अनुदान सहयोग उपलब्ध कराने का उल्लेख समझौता पत्र में किया गया है। भारत सरकार की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पताल निर्माण में दूतावास द्वारा अनुदान दिए जाने की जानकारी नगर प्रमुख वसंत कुमार बसनेत ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। घने धुएं की परत से आज भारत की राजधानी नई दिल्ली ढक गया। प्रदूषण का स्तर के तेजी से बढ़ने के बाद हवा में तीखी गंध भर आई है, जिसने स्वास्थ्य संकट को और गंभीर बना दिया है। इस स्थिति से असंतुष्ट निवासी सरकारी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित जोखिम सीमा से कहीं अधिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI आज सुबह 344 मापा गया। यह स्तर गंभीर श्रेणी में आता है और सांस लेने के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सिरदर्द, आंखों में जलन और लगातार खांसी की समस्याएं देखी जा रही हैं। निवासियों ने इस वार्षिक स्वास्थ्य संकट पर नीतिगत कदमों के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करने तक सीमित राजनीतिज्ञों के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त करना शुरू कर दिया है। लगभग 3 करोड़ आबादी वाला नई दिल्ली और उसके आसपास के इलाके अक्सर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर बने रहते हैं। स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था IQAir की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत में हैं, जिनमें नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों ने अस्थायी रूप से निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है और डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक लगा दी है। साथ ही बारिश कराने की उम्मीद में क्लाउड सीडिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि दीर्घकालिक रूप से उत्सर्जन कम करने की ठोस नीति और स्थायी समाधान ही दिल्ली के नागरिकों को वास्तविक राहत दिला सकते हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी को पदमुक्त करने का सरकार ने किया निर्णय। नए प्रदेश प्रमुख के रूप में सुरेंद्र लाभ की हुई सिफारिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नेकपा एमाले के सरोज कुमार यादव हुए नियुक्त। नियुक्ति के विरुद्ध 7 दलों ने जनकपुर में किया विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में हुए केस दर्ज। स्थानीय तहों के साथ समन्वय और सहकार्य करके ही सरकार आगे बढ़ेगी, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।